तो शरीर भी एक भूमि है, मन की काम करने की खिंड है और पांच कर्मेंद्रियों के विषय और ज्ञानेन्द्रियों के विषय। तो एकादश मन के कार्य है और एकादश इसकी भूमिया है, इसके विषय उसी को गिना रहे हैं। अगले श्लोक पूरम का दो अर्थ होता है। पूरम मतलब देह और गेह। देह तो साथ ही है कि मैं यह हूं और मेरा यह है, यह भी भूमि है। लेकिन देह और गेह को दो खंड में बांट करके बाद में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसके 12 ऑफिस 11 ही में वाद्य किनारे हैं। गंधा प्रतिस्पर्श रस श्रवण से विसर्ग रत्य परिचल प्रसन्नता। ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय हैं उन्हीं को मन का विषय कहा जा रहा है। तो पहले ज्ञानेन्द्रियों में कौन कौन विषय है? गंध, आकृति, आकृति मतलब रूप, स्पर्श, रस और श्रवण से, श्रवण से मतलब शब्द। ये 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय इसकी भूमि। और विसर्ग, विसर्ग मतलब मल त्याग, विसर्ग। और अर्ति विसर्ग, रति, रति मतलब स्टेशन। और अर्ति, अर्ति मतलब गति, चलना। अभिजल्प, अभिजल्प मतलब बोलना। और शिल्पा, हाथ से काम करना। ये 5 कर्म इंद्रियों के विषय 10 गिनाए गए हैं। जो भूमि है, भूमि ही बता, विषयानुवाद मन के जो 11 विषय हैं उसको बता रहे हैं। 11 भूमि, गंधा प्रतिस्पर्श रस श्रवण से विसर्ग रक्त और परिजल क्षेत्र एकादशम श्री करण ममेति सच्चा महम प्राथमे कुमार। यह प्रश्न होता है कि शरीर में रह करके वास्तव में कौन देखता है, कौन बोलता है, कौन खाता है, कौन चलता है, वास्तव में कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन चल रहा है। आत्मा नहीं सुन रहा है, वो प्राकृत शब्द नहीं सुनता है, प्राकृत कार्य नहीं करता है। वह मन से अस्पृष्ट हो गया है, मन आलिंगन में ले लिया, वास्तव में मन कर रहा है। कभी कभी तो लोग आत्मा को ही नहीं भगवान को भी कह देते हैं सब भगवान कर रहे हैं। अगर इतना तक कहें कि सब आत्मा कर रहा है तब तो ठीक है। कभी कभी साधुओं को भी मैं सुना हुआ जो क्या बात, हमारे राम डोल डाल जाएंगे, तो हमारे राम डोल डाल जाएंगे, तुम डोल डाल जाओगे कि राम जाएंगे, ऐसे बोलते हैं, हमारे राम तुम्हारे राम, ये राम ये राम। मायावादी लोग जब भोजन परोसते हैं तो रोटी राम, भात राम, दाल राम करते हैं, परोसते हैं, उन्हें शर्म नहीं लगती। ऐसे परोसते हैं जल राम। कुंभ मेला में मैं उनके टाइम पे खाने चला गया था तो सिंह ने कुंभ देख गया। वास्तव में विचार करके देखना चाहिए कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, कौन खा रहा है, या मन का कार्य है। तो मन के 12 जो विषय है, भूमि है, उनको यहाँ गिनाया गया। मन हमेशा गंध में भागता रहता है या रूप देखने में लगा रहता है, लेकिन देखेगा इंद्रियों के द्वारा, नासिका के द्वारा गंध लेता है, आंखों के द्वारा रूप देखता है, तो इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का अनुभव करता है, और विविध प्रकार से। आगे आप सुनेंगे कि सहस्रशः शतशः कोटिशश्च करोड़ों करोड़ों प्रकार का रस है, करोड़ों करोड़ों प्रकार का स्पर्श है, रूप है, और मन इसी में भटका रहता है, देखता रहता है। अनंत अनंत जनियों में सब जगह अनंत अनंत प्रकार से खाना पीना देखना ये सब करता रहता है। आगे किनारे तो गंध, आकृति, स्पर्श और रस। रस अर्थात टेस्ट, स्वाद। स्वाद कौन लेता है? जीभ नहीं स्वाद लेती है, स्वाद लेता है मन जिह्वा द्वारा, तो रस जो है इसका फील्ड है, रस लेता रहता है। आज के युग में तो बहुत अधिक है रस का निर्माण हो चुका है, बड़े बड़े स्टोर हाउस में जाकर देखिए तो कितना कितना प्रकार का फूड, फास्ट फूड, क्या था, पीने के सामान, चाटने के सामान, नाना प्रकार के सामान लोग रखे। यह मन रस का अनुभव कर रहा है विभिन्न प्रकार के टेस्ट का, और सर्वांशी श्रव, श्रव का अर्थ होता है शब्द, शब्द जो है वो मन का विषय भूमि, सुनता रहता है, सुनता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का मन कुछ न कुछ सुनना पसंद करता है, सुनता रहता है। सुनना है तो भागवत सुनना चाहिए या भगवान का नाम, लेकिन मन हमेशा कान के द्वारा शब्दों का स्वागत करता है, तो शब्द इसके फील्ड है और विसर्ग। प्राय दिन में दो चार बार शौच करता रहता है मन, वास्तव में शरीर से मलोत्सर्ग होता है लेकिन मन मानता है कि मैं शौच हो रहा हूं, ये कर रहा हूं। आत्मा के लिए शौच आदि की कोई जरूरत नहीं है, न उसे रूप देखने की जरूरत है, ये बाहर के सुख से सुखी होगा, मन सुख का अनुभव करता है। और रति स्त्री संग आदि के द्वारा मन वास्तव में सुख का अनुभव करता है, आत्मा नहीं। यह भी एक मन का विषय है। और पिचलना, कबड्डी खेलना, स्पोर्ट्स, नाना प्रकार के खेल कूद करता है, मन करता है। गमन जो है चलना, यह भी एक इसका फील्ड है। अभी चल बोलना, विभिन्न प्रकार से बोलता रहता है, हास नाटक कहानियां वार्तालाप कई प्रकार से, और शिल्प हाथ का कर, इसके फील्ड एका कसम स्वीकरण ममेती सज्जा महम दर्शने आप। देखिए यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, स्वीकरण ममेती जिन वस्तुओं को या जिस शरीर को यह मैं मानता है, स्वीकार करता है, स्व का अर्थ अपना, और स्वीकरण स्वीकार का अर्थ अपना बनाना, स्वीकार किसी को अपना मानते हैं या अपना बना लेते हैं तो उसको स्वीकार कहते हैं। तो स्वीकार किया है, शरीर को मैं माना है और शरीर के संबंधियों को मैं मेरा मानता है, तो जो मेरा मानना हुआ मना ही थी, यह है एकादश फील्ड मन का, ग्रहण क्षेत्र, मानता रहता है मेरा ये है मेरा वो है। देखने के साथ ही मन यह मानता है कि यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा गांव है, मेरा ये है, मेरा वो है। यह जो मन बुद्धि है यह भी एक फील्ड मानता रहता है। अच्छा, लेकिन कुछ विद्वान लोग एक एक मतलब कुछ है विवेकी जन ऐसा कहते हैं कि यह जो खास शरीर है यह बारहवां विषय है मन का, तो इसमें उसको अहम शब्द कह रहे हैं। तो दो प्रकार के मन वाले व्यक्ति होते हैं इस संसार में, एक होते हैं जो कुछ ज्ञान लाभ करते हैं, विवेकी होते हैं, और कुछ अविवेकी गधा होते हैं। तो जो अविवेकी मूढ़ है वो शरीर को ही मैं मानते हैं अहम, लेकिन जो विवेकी होते हैं इसको मम मानते हैं कि मेरा है बस, ये अंतर होता है। मैं इस शरीर में रह रहा हूं, यह शरीर मेरा है, यह मानना दूसरी बात है, और मैं ही अध्ययन हूं, यह तो बारहवा अविवेकी लोग मानते हैं। और इस सज्जा को मन का बारहवा विषय माना गया। सज्जा, सज्जा का अर्थ है सयते अस्मिन इति सज्जा, जिसमें जीव सोता रहता है अहंकार रूप से, इसलिए शरीर को सज्जा पर सो गया। और यह ऐसी सज्जा है कि इस पर जो जीव सोता है इसको मैं मान लेता हूं। जैसे आप किसी पलंग पर सोइए और हमेशा ये भावना रहे कि मैं पलंग हूं, बहुत भारी अज्ञान हो गया, और शायद वो पलंग आपको मर दिया जाए और हमेशा काम करके ले चलो कहना पलंग, इस तरह से कुछ अविवेकी लोग हैं जो शरीर को मैं मानते हैं। इसलिए मन के 12 विषय हैं, आचार्य लोग ऐसा कहते हैं। होना चाहिए 11, लेकिन केवल मन तक कोई रह गया कि मेरा शरीर है, तब तो 11 विषय है। लेकिन उसके परे और अधिक अज्ञानी जो है वो मानता है मैं ही रहते हूँ, तो ये 12वां विषय है मानता। एकादशम स्वीकरण मम ही थी, लेकिन सज्जा महम द्वादश में कहा, इस सज्जा को, इस शरीर को जिसमें अहम बुद्धि होती है, मैं बुद्धि होती है, विद्वान लोग मन का 12वां ऑफिस मानते हैं, देश में कार्य करता रहता। इसलिए मन और मन की वृत्तियों का वर्णन किया जा रहा है कि आत्मा को इसे अलग करना है। आगे इसका स्पष्ट वर्णन आ रहा है। इन विषयों को समझना बड़ा आवश्यक है। शरीर को मेरा मानना और शरीर को मैं मानना, इन दोनों में बहुत भेद है। कम से कम ये अच्छा है कि मेरा मान करके चले, यदि मेरा भी नहीं है, या अभी गलत धारणा, यदि मन की मान्यता है आत्मा की नहीं, ये शरीर आत्मा का नहीं है। भगवान को कई जगह प्रश्न किया गया है, शरीर किसका है, क्या माता पिता का है, उन दोनों ने मिलकर के इसको उत्पन्न किया इसलिए उनका हो सकता है। फिर उत्तर मिलता है ना, ना उनका नहीं, पिता का भी नहीं है, माँ का भी नहीं। तो विवाह हो जाने के बाद एक दूसरी स्त्री हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़ते हैं पाणी ग्रहण, तो वो कहती है मेरा शरीर, माता पिता का स्व तो हटा, और सभी लोग कहते हैं हाँ ये तो उसका है। स्त्री को ये भावना होती है कि मेरा शरीर है, मेरा पति, और माता पिता धीरे 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 स्वप्न को छोड़ते जाते हैं, उनका स्वप्न उठता जाता है। और वही व्यक्ति यदि कहीं सर्विस करने जाए सरकार में, मान लीजिए सेना विभाग में, और बाउंड्री पर सीमा पर खड़ा है, तो सरकारी आदमी कहते हैं मेरा स्टाफ है, मेरा आदमी है, और उस समय अब क्या स्त्री कहेगी कि ये मेरा है। वो इसलिए कहते, सरकार कहती है कि मेरा है, मैं इसको पोस रहा, मैं इसको भोजन दे रहा हूँ, वेतन दे रहा हूँ, इसलिए मेरा आदमी है। प्रयोग भी करते हो हमारा आदमी, मेरा आदमी, पहले कोई मेरा नहीं कह रहा था, भर्ती के बाद मेरा कह रहा था। और कुत्ते, सियार और गीत ये कहते हैं कि मेरा फूट है, मेरा पूजा। वो इसी आशा से पेड़ पर बैठे रहते हैं कि कभी गिरेगा मैं खाऊंगा, मेरा भोजन है, भले इसको मिलिट्री कहो या राष्ट्रपति कहो, पैकिंग घूम रहा है, तुरंत में गिरेगा हम खाएंगे। तो अग्नि देवता कहते हैं अच्छा ये मेरा मेरा आहार है, मैं इसे भस्म बनाऊंगा, मैं ही शरीर, शरीर ही मैं, शरीर के साथ अपना भेद भी नहीं समझ पाते। अधिकांश संसार में ऐसे ही लोग हैं, तो अपने को इसे अलग करना है, इसीलिए इसका वर्णन करना है। अच्छा, द्रव्य स्वभाव सकर्म काल ही एकादशामी मनसो विकारा सहस्र शतश कोटि शस्त्र क्षेत्र जतो न मिथो न सुपाश्य। बहुत सुंदर विषय है, श्रद्धा से सुननी चाहिए। वृत्तियों की अनंतता का वर्णन कर रहे हैं। अमि एकादश मनस विकारा, ये जो मन के 11 विकार हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है मन के जो कार्य हैं, ये सहस्त्र हो जाते हैं, सतसा करोड़ों हो जाते हैं, 11 लेकिन ये करोड़ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? द्रव्य स्वभाव सहकर्म काले, द्रव्य स्वभाव आशय और कर्म तथा काल के कारण हजारों लाखों करोड़ों हो जाते हैं। मतलब लाखों प्रकार से, करोड़ों प्रकार से मन जो है संसार को भोग रहा है, लाखों प्रकार के रूप, लाखों प्रकार के शब्द, लाखों प्रकार के स्पर्श आदि भिन्न भिन्न प्रकार से भोग रहा है, भोग रहा है, भोग रहा है। और प्रत्येक योनि में, प्रत्येक जगह पर, इसलिए काल शब्द का प्रयोग किया गया। जाड़ा का दिन आता है तेनी यह मन जो है तुरंत और हॉट चीज पसंद करने लगता है, स्वेटर सिलाओ और एयर कंडीशन में जो पहले बर्फ बना रहा था वो आग उगलने लगता है तुरंत शरीर को, तो इसको काल भेद कहते हैं। तो गर्मी के दिन में मन इन विविध विषयों का सेवन करता है भिन्न भिन्न तरह से, काल के अनुसार और द्रव्य के अनुसार। द्रव्य का अर्थ है शरीर के अनुसार। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और एक एक योनि में अनंत अनंत जीव हैं और ये जीव इस प्राकृत जगत को अपने मन से भिन्न भिन्न ढंग से भोग रहे हैं। ये दीमक जो है लकड़ी चबा रहा है ना, लकड़ी काट काट करके खाता रहता है, वो भी खा रहा है। और अनंत प्रकार है, देखेंगे कीड़े मकोड़े, कोई घूमी खा रहा है, कोई लकड़ी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, मनुष्यों में भी कोई पान चबा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है। मतलब ये जो रस वासना है जीव मन की अनंत प्रकार की हो जाती है द्रव्य भेद से। विविध द्रव्य हैं, वस्तुएं हैं, उनको विविध तरह से खाते, खास करके मनुष्य बहुत तरह से खाते, दूसरे जीव बहुत बहुत प्रकार से नहीं खाते। गाय को छोड़ दीजिए खेत में हो, चरने लगेगी न तो उसे नमक की चिंता है, न अचार की और न शुगर की। कभी मांगने नहीं जाएगी कि हमको थोड़ा चीनी दो, थोड़ा चाय बनाओ। जैसे खाने को दिया गया खास बस खाने लगेगी। और मनुष्यों से अधिक बलवान होते हैं ये पशु, साधारण खाकर और बहुत बहुत मसाला खाकर के मनुष्यों की क्या दशा है। इतने प्रकार के रोग पशुओं में नहीं होते जितना मनुष्यों को रोग हो रहा है, अनेक प्रकार के रोग। तो खास करके मनुष्य बहुत बहुत प्रकार से खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, सुद्रव्य भेद करते हैं। जैसा शरीर है उसके अनुसार ही भोग भोग रहा है मन, मन शरीर के अनुसार भोगता है। अगर मनुष्य शरीर मिला है तो इसको मसाला चाहिए, और जेन ही हरिण का शरीर मिलेगा तो सूखा घास चाहिए। सूखा घास है हरा घास, मुझे याद आ गया था जैसे भरत, घास चाहिए, उस घास को खा। लेकिन प्रत्येक शरीर में इसे स्पर्श चाहिए और स्पर्श भी भिन्न भिन्न प्रकार के, मनुष्यों में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का स्पर्श है। कई प्रकार, जैसे ये एसी हवा है ये स्पर्श के लिए बहुत बहुत खर्च करके और केवल अनुकूल वायु लेने के लिए आदमी प्रयास करता है, बहुत तरह से उनका रहा है। आत्मा को उस ऐसी हवा से कोई मतलब नहीं, मन को उससे मतलब। और फिर कोमल गद्दा, मुलायम चीज अनेक प्रकार के स्पर्श करता रहता है, छूता रहता है। अनेक बिछौने हैं, जब आदमी अध्यात्म में उन्नत हो जाता है तो भूमि पर भी सो सकता है, कोई अंतर नहीं होगा। और भूमि पर सोते हैं बिना गद्दा के तो उनका शरीर निरोग रहता है, गद्दा पर सोने वालों को अनेक रोग होता है। एक दिन में सोने में कहीं इधर दर्द तो कहीं उधर दर्द, फिर भी मनुष्य उसी पर सोना चाहता है। तो जो ऋषि मुनि लोग वन में चले जाते थे, राजा लोग, वो अपने साथ स्लीपिंग बैग नहीं ले जाते थे, कोई बेड ले जाए धो करके। सुखदेव गोस्वामी तो कौपीन भी नहीं धोते, क्या जरूरत है उनकी। शरीर ही अपने आप भार है, अब इसके ऊपर क्या भार डाले, कंबल गोला करो, ये आसन वो आसन उस पर दिए, टैसी बक्सा ये वो, ये तो और भार है वास्तव में आत्मा के लिए। धो करके ले चलो, ये ऐसे ओढ़ेंगे, ऐसे पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये मन इन्हीं विषयों को भोगने में पड़ा हुआ है, करोड़ों प्रकार के हैं। सारे संसार में अगर इस समय आकलन किया जाए तो ये रूप रस गंध आदि के जो प्रकार हैं समस्त ध्वनियों में धनुष ध्वनियों करोड़ों से भी ज्यादा होगा। अनंत अनंत प्रकार से जीव इन प्राकृत विषयों को भोग रहा है, मन भोग रहा है और आत्मा को फंसाए हुए है। द्रव्य स्वभाव, और स्वभाव का अर्थ है अनादि काल से प्रत्येक जीव का कुछ भिन्न भिन्न स्वभाव बन गया है इस संसार में, भिन्न भिन्न स्वभाव। किसी को कुछ भोजन पसंद है, किसी को कुछ शब्द पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद है तो किसी को कुछ शब्द पसंद है। मान लीजिए मनुष्य है, अनेक गान गाता है, बोलता है, लेकिन यही जब गाय हो जाएगा तो बस बाय बाय जितना ही बोल सकते। यह अभी एक प्रकार है। और यदि आदमी गाय बन जाएगा तो अपने बच्चे को चाटेगा, नख से सीखता। मनुष्य चाटता नहीं, वो हाथ से बच्चों की सेवा करता। योनि भेद से स्वभाव भेद होता है और स्वभाव भेद से विषयों को भोगने में भी भेद हो जाता है। इसी तरह से भोगते हैं। मनुष्यों में भी सबको सब भोजन पसंद नहीं है। कोई कोई ऐसे हैं जब तक उनको मांस नहीं मिलेगा वो तृप्त नहीं होंगे, तो उनका मन मांस चाहता है, कुछ चाहिए। जैसे बंगाली लोग, उनको मछली चाहिए नहीं तो उनको तृप्ति नहीं हो सकती। मैं सबकी बात में नहीं कह रहा है लेकिन जनरल ऐसा है। कुछ ऐसे होते हैं सब दीजिए उनको, लेकिन सिगरेट ना दीजिए, बीड़ी ना दीजिए, तो वो अपने ढंग से स्वभाव भेद से विषयों का सेवन कर रहे हैं। तो स्वभाव भेद से ये मन के विकार, मन के कार्य बदलते रहते हैं, अनंत अनंत हो जाते हैं। और आशय भेद, आशय का अर्थ है संस्कार। स्वभाव अलग है और आशय अलग है। अपनी अपनी वासना, अपना अपना संस्कार होता है। किसी को कुछ पसंद पड़ रहा है, किसी को कुछ पसंद पड़ रहा है, लेकिन जो भी पसंद है वो है प्राकृत, अप्राकृत नहीं। ये मन के विकार हैं। सहस्रशः शतशः कोटिशः क्षेत्रज्ञता न मिथो न स्वपः। और कर्म भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म फल है, तो उस कर्म फल को भगवान सबके सामने रख देते हैं। तो सबके कर्म अलग अलग हैं, इसीलिए सबको अलग अलग कर्म फल मिलते हैं, एक समान नहीं मिलता। मनुष्यों में भी हम देखते हैं सबको एक समान खाने को नहीं मिलता, सभी एक समान नहीं पहनते, एक समान सब कुछ नहीं देखते। देखने के लिए भिन्न भिन्न विषय है, किसी को किसी को पहनने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, चलने के लिए। इस समय तो चलने के लिए भी हजारों प्रकार के उपाय। कोई पैदल चल रहा है, कोई सीट पर बोझ लेकर के चलता है, तो कोई हवाई जहाज से चल रहा है, हवाई जहाज में भी कोई एक्सिक्यूटिव क्लास में चल रहा है और कोई इकोनॉमी क्लास में चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसमें भी कई फ्लाइट्स हैं, कोई सस्ता है, कोई महंगा है, कई प्रकार के। और फिर जमीन पर रेंगने वाले वाहन तो बहुत हैं, बहुत बहुत प्रकार से। और सब अपना अपना कर्म है। किसी को बहुत सुंदर कार भगवान ने दिया है तो किसी को पैदल जाना पड़ता है। इसीलिए जड़भरे जी कहते हैं कि क्षेत्रज्ञता शिव न मिथो न स्वतः शिव। ये दुनिया के जितने भी विषय हैं और इन विषयों को देख करके मन में जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, खाने की, भोगने की, चलने की, घूमने की, छूने की, यह क्षेत्रज्ञ से हो रहा है। ये स्वतः नहीं विषय उत्पन्न हो रहे हैं और मन में स्वतः विकार नहीं हो रहा है, यह भगवान के द्वारा हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, रूप रस गंध आदि, ये सबको भगवान ने उत्पन्न किया है। कोई भी वस्तु जीव बना नहीं सकता है, सब कुछ भगवान बनाए। चाहे वो अमेरिका में वस्तु हो, चाहे भारत में हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, कहीं भी जो भी वस्तु है, रूप रस गंध, जिसको भी जीव भोग रहा है, मन भोग रहा है, वो सब क्षेत्र कैसे होता है, भगवान देते हैं। और जन्म भी किसी को भगवान देते हैं, कहीं उसको शरीर भी भगवान देते हैं, और शरीर से जो भी भोगता है उसको भी भगवान देते हैं। मन इन वस्तुओं का निर्माण नहीं करता है, मन इन वस्तुओं में विकृत होता है कि यह मेरा है या नहीं है, अच्छा है खराब है, ये है वो है, लेकिन वस्तुएं जितनी हैं सब क्षेत्रज्ञता स्यु क्षेत्रज्ञ से होती है, भगवान देते हैं। जैसे मान लीजिए हम ठंडी हवा में घूम रहे हैं तो हम ठंडी हवा नहीं बनाए, हम समुद्र तट पर टहलने जाते हैं, अगर हमारा मन समुद्र की ठंडी हवा पाकर के सुख का अनुभव कर रहा है तो सुख का अनुभव करना ये मन का कार्य है, लेकिन ठंडी हवा और वो बीच और समुद्र सब किसी का बनाया हुआ, तो हमारा बनाया हुआ नहीं। तो अनंत कोटि जीवों को अनंत अनंत प्रकार से भोगने की सुविधा क्षेत्रज्ञ दे रहे हैं, कृष्ण दे रहे हैं। क्षेत्रज्ञम चात्मान विधि सर्व क्षेत्र सुखार, और कृष्ण को क्षेत्रज्ञ कर, कृष्ण कहते हैं गीता में मैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रारी जानाति इति क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रों को खेतों को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रों जानाति इति क्षेत्रज्ञ। कई प्रकार के क्षेत्र हैं, पहला क्षेत्र है यह होल प्रकृति, प्रकृति मंडल, इसको भगवान उत्पन्न करते हैं और जानते हैं, जानने का मतलब है पूरा पूरा अपने कंट्रोल में रखना। जानने का मतलब ये नहीं है केवल हम जानते हैं, जैसे यहां पर हम जानते हैं ताजमहल कौन बनाया कब बना हम जानते हैं, लेकिन हम कंट्रोल नहीं करते हैं, यह हम बनाए नहीं है, वास्तव में संस्कृत में इसको जानना नहीं कहेंगे। क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है जो क्षेत्र को बनाया है, जानता है, उसको मिटा सकता है, उसके कंट्रोल में है सब कुछ, उसको मेंटेन कर रहा है, उसको क्षेत्रज्ञ। तो पूरा प्रकृति मंडल पहला क्षेत्र है, तो उसके क्षेत्रज्ञ कौन है, कारणोदक शाही पुरुष पहला क्षेत्रज्ञ। और इसके बाद क्षेत्र है इस प्रकृति के भीतर एक ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड, यह क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को वे कंट्रोल करते हैं, देखते हैं, सब कुछ संभालते हैं गर्भोदक शाही पुरुष। और वही क्षेत्र के भगवान फिर एक एक जीव के शरीर रूपी क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं, जानते हैं, इसलिए उनको क्षेत्र के कहते हैं, सबके हृदय क्षीरोदक शाही भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, सर्व क्षेत्र सुधार सभी क्षेत्रों, हमारे हृदय में भी क्षेत्र ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठ, सबके हृदय हृदय वो बनाए हैं और शरीर बनाए हैं, भोग बनाए हैं, सब बनाए हैं, वो सब जानते हैं किसको कौन भोग देना है, किसको कौन शरीर देना है, कब शरीर से उसको निकाल देना है, क्या भोग मिलेगा नहीं मिलेगा, किस दिन उसको उपवास रखना है या किस दिन फीस्ट देना है, क्षेत्रज्ञ को सब मालूम। वेदा हम समतीतानी वर्तमान चार्जुना भविष्याणी भूतानी मान तो वेद में प्रश्न, भगवान गीता में स्पष्ट घोषणा करते हैं कि मैं सब जानता हूं, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ ही ये सारी व्यवस्था किया है, खाने पीने भोगने चलने घूमने, यदि वो धरती नहीं बनाया होता तो हम चल नहीं सकते थे, यदि वो आकाश नहीं बनाया होता तो हम उड़ नहीं सकते थे, यदि वो पेट्रोल नहीं बनाया होता और इस्पात नहीं बनाया होता तो हम भगवान नहीं बना सकते थे, वो शरीर हमको नहीं दिया होता तो हम चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो जो भी मन के अधिकार हैं, देखना सुनना खाना पीना, ये क्षेत्रज्ञ के चलते हो रहा है, यहां तक कि वो भीतर बैठा हुआ है और मन के विकृत होने का वही अवसर देता है, मत स्मृति ज्ञान में पहुंचना चाहिए, बाहर सब कुछ भी बनाए हैं और भीतर भी स्विच उनके हाथ में है, किसी चीज की आप याद करना चाहते हैं अगर भगवान सैंक्शन करेंगे तो याद आएगी, नहीं तो माथा पीटते रहिए होगी आदमी, कभी कभी आदमी भूल जाता है और वो बात याद रहती है और अकस्मात भूल जाता है, क्या यहां से स्विच ऑफ हो गया, परमात्मा क्षेत्र के भीतर से ऑफ कर दिया। अगर पावर हाउस से करंट ऑफ कर दिया जाए तो बल्ब को ठोक करके आप प्रकाश नहीं ला पाएंगे, क्योंकि प्रकाश वहां से नहीं आ रहा है। मत्ता स्मृति ज्ञान अपहनम छ, मुझसे स्मृति आ रही है, मुझसे ज्ञान आ रहा है, मुझसे विस्मृति आ रही है। इसीलिए जगभर जी कहते हैं कि क्षेत्रज्ञता स्यु न मिथ्या न स्वता, न ये आपस में मिल करके कुछ पैदा कर सकते हैं न अपने आप हो सकते हैं, ये सारा क्षेत्रज्ञ के द्वारा हो रहा है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। यह है अमृत।